सुर असुर का दीप देते ब्रज जो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई चाहूंगति दुख जीव भरे है परिवर्तन पंच करे है सब हिंद संसार असारा या में सुख नाही लगारा शुभ अशुभ कर्म फल देते भोगे लिए एक ही देते सुत गारा हो नसीरी सब सारथ के है मीरी जल से जो दिए तन मैला भिन्न भिन्न नहीं भैला तू प्रगट जुले धन दामा क्यों है क्यों मिल सुख रामा फल रुद्र राग मल थैली की कस वसादित मैली नव द्वार भये कारी अस देह करे की मयारी।
देखिए अपनी पांचवी ढाल चल रही है इसमें 12 भावना का स्वरूप। ये चौथी ढाल में हमने सबसे पहले तो 6 डाला जो हम पढ़ रहे हैं उसकी रचना किसने की है? दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी ने उसकी रचना की है। हमने पहली ढाल के अंदर 4 गति के दुखों का वर्णन किया, फिर वो दुख हमको क्यों हुए वो हमने दूसरी ढाल में समझा। इन 2 ढालों के बाद जब प्रश्न आया कि मुझे दुख भी है और मुझे दुख का कारण भी पता है लेकिन अब उन दुखों को दूर करने का उपाय क्या है, तो उस उपाय को बताते हुए तीसरी ढाल में सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया, उसके बाद चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। तो अब ये बात आती है कि सम्यक दर्शन और ज्ञान के बाद क्या आता है? चारित्र आता है, सम्यक चारित्र। तो पंडित जी ने सम्यक चारित्र का डायरेक्ट वर्णन ना करते हुए बीच में 12 भावना क्यों बोली? पहले तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन बोला, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान बोला, तो पांचवी ढाल होनी चाहिए थी सम्यक चारित्र की, तो उन्होंने 12 भावना क्यों बताई? तो सम्यक ज्ञान तक की जो अवस्था है, एक देखो चारित्र में 2 अवस्था होती है, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। तो एक देश चारित्र और सकल चारित्र की अवस्था के बीच में जब मुनिराज सकल चारित्र की अवस्था में आते हैं तो उस सकल चारित्र से पूर्व वो ये 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। पहली बात समझे क्या कहा कि जब मुनिराज सकल चारित्र की अवस्था में, सकल चारित्र मतलब संपूर्ण, जब उनका पूर्ण जो चारित्र की अवस्था हो जाती है, जब महाव्रत की अवस्था आती है, तो उस पूर्ण चारित्र की अवस्था पर जब मुनिराज आते हैं तब वो इस 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य की वृद्धि के लिए करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि ये तो फिर मुनिराज के लिए हुए तो हम उसका चिंतन क्यों करें? तो उसका भी पंडित जी ने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन किया कि दोनों के बीच में रखा है, सकल चारित्र के बाद भी नहीं रखा और इसके पहले भी नहीं रखा, दोनों के बीच में रखा है कि यहाँ से श्रावक भी वैराग्य की वृद्धि करेगा तो भी वो 12 भावनाओं का चिंतन करेगा और मुनिराज भी वैराग्य की वृद्धि के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। तो ये जो 12 भावना है, वैसे देखिए 12 भावना बहुत सी पाई जाती है, आप अगर विचार करेंगे तो कम से कम 8 से 10-12 भावना तो आप भी ढूंढ सकते हैं। जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना है, बुद्धन जी की 12 भावना है, और बुद्धा दास जी की है, मंगत राय जी की है, दौलत राम जी की है, ऐसी सबकी अलग अलग भावना है, युगल किशोर जी की है, हुकुमचंद जी की है, ऐसी सबकी अलग अलग भावना है और सबके अंदर इनको 12 भावना क्यों कहते हैं? सबसे पहले 12 भावना का दूसरा नाम क्या है बोलिए? जनरल है, क्लास है, इसके लिए आंसर दे सकते हो। 12 भावनाओं का दूसरा नाम क्या है? जनरली सुना होगा, द्वादश अनुप्रेक्षा, द्वादश मतलब 12, अनुप्रेक्षा मतलब भावना। अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है, देखिए मूल तो अनुप्रेक्षा ही कहा जाता था, अनु प्लस प्र प्लस शिक्षा। अनु मतलब अनुसरण करना, मतलब किसी भी चीज को फॉलो, उसका अनुसरण करना। प्र मतलब विशेष, प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से। इच्छा मतलब चिंतन, किसी भी चीज का विशिष्ट रूप से चिंतन करना, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसी का ही देशगत जो शब्द हुआ वो हुआ भावना। भावना मतलब किसी भी चीज की बार बार भावना करना। अब उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपको धर्म की भावना हो, भावना एक कॉमन वर्ड है, उसमें आप किसी भी चीज की भावना रख सकते हैं कि आपको किसी चीज को पाने की इच्छा है, किसी को कोई मोबाइल की इच्छा है, किसी को किसी टैबलेट की, किसी भी चीज की आपको इच्छा है, वो एक तरह से भावना है। वो भावना जब प्रकृष्ट रूप से अनुसरण करती है किसका, मोक्ष मार्ग का, जब वो भावना मोक्ष मार्ग का प्रकृष्ट रूप से अनुसरण चिंतन करती है, तब उसको वास्तव में यहाँ पर 12 भावना, और वो भावनाएं वैसे तो बहुत प्रकार की है, लेकिन उनको 12 मेन रूप में यहाँ पे कहा गया है, इसके लिए उन्हें 12 भावना हम कहते हैं। बराबर है। अनु मतलब अनुसरण करना, विशेष रूप से किसी भी चीज का विशेष रूप से चिंतन करना, अनुसरण करना, उसका नाम है 12 भावना। अब ये जो 12 भावना है ये दो भागों में विभक्त होती है, पहली 6 प्लस बाद की 6, 6 प्लस 6। किसी को 12 भावना के नाम याद है पूरे? पहली अनित्य, दूसरी अचरण, तीसरी संसार, चौथी एक कत्व, पांचवी अन्यत्व, छठी अशुचि, सातवी आश्रव, बुक में देख सकते हैं, आश्रव, एक संग, नाइन निद्रा, टेन लोक, इलेवन बोधि दुर्लभ, और 12 धर्म। बराबर है। अब इन जो 12 भावना है, उन 12 भावनाओं के अंदर जो पहली 6 है और बाद की 6 है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व प्लस अशुचि, ये जो 6 भावना है, ये मेन 6 भावना देह के साथ का संबंध बताती है। ये जो 6 भावना है वो मूल में वैराग्य उत्पन्न करती है, इस देह से भिन्नता बताकर, इन संयोगों से भिन्नता बताकर। बाद की जो 6 है, जो आश्रव आदि है, जिसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, जो आश्रव आदि भावनाएं है वो तत्व परक भावनाएं है। प्रारंभ की 6 वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है, और बाद की 6 तत्व का वास्तविक ज्ञान कराने वाली है कि ये जो इसमें भी क्रम आप देखें, सबसे पहले क्या है, अनित्य। एक जनरल कोई भी व्यक्ति किस चीज से डरता है, हम लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, किसे? बोलो जोर से बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, बोलो किससे डरते हैं, जनरली हम किससे डरते हैं, भूख से, दुख से, दुख किस, सबसे बड़ा दुख क्या है, हाँ बोलिए बोलिए, जन्म मरण, जन्म से नहीं डरते हैं, सबसे ज्यादा हम डरते हैं मरण से। कितना भी हमको दुख हो, कितना भी कुछ हो, सबसे ज्यादा हम किस चीज से डरते हैं, मरने से डरते हैं कि मैं मर नहीं जाऊं, मैं किसी भी चीज में मर नहीं जाऊं, मेरा कुछ अपघात नहीं हो जाए, मेरा कुछ मतलब ऐसा अहित नहीं हो जाए। तो ये जो अनित्य भावना है कि एक व्यक्ति चला, मान लीजिए एक व्यक्ति चला यहाँ से, कैसे ही मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई भी था, एक व्यक्ति चला, अब ये सबसे पहले किससे डरता है, मरने से डरता है। तो अब इसका सबसे पहले मरने का डर हटाना है, तो वो कैसे हटाएंगे, सबसे पहले भावना बताई अनित्य। अनित्य भावना क्या कहती है,
कुछ भी नित्य नहीं है, मतलब जो आया है वो जाएगा। तो यहाँ पे डर हटा कि और डर लगा, समझे? क्या कहा कि यहाँ पे हमें इसे मरने का डर हटाना है, इसको अनित्य बताया कि अनित्य भावना मतलब कोई भी नित्य नहीं है, तुमको भी एक दिन मरना है। तो यहाँ पे डर हटा उसका कि डर लगा? डर लगा ना, उल्टा। तो क्यों डर लगा? क्योंकि उसने अनित्य भावना के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा। अनित्य भावना क्या कहती है कि तुम जो आए हो, जाना सबको है, लेकिन कोई तुमको तुम्हारे नियत काल से, जो तुम्हारा नियत समय है, उससे पहले चाहे कोई भी सामने आ जाए, तुमको मारने में समर्थ नहीं है। आप हो, आप चाहे कैसे भी संयोग में आ जाओ, लेकिन आपको कोई भी मारने में समर्थ नहीं है। तो अब बताओ, डर हटा कि डर हटा ना कि अब मैं कैसे भी रहूं, मेरा जब तक मेरे आयु कम शेष है, तब तक मुझे इस संसार में कोई भी प्राणी आ जाए लेकिन मुझे मार सकता नहीं है। एक कपड़ा ला, कपड़ा उसको चलता है, ये हुआ अनित्य भावना। अब इतना तो मालूम चल गया कि कोई मुझे मार नहीं सकता, ये भय तो निकल गया, लेकिन अब क्या भय आया कि मेरा भी समय आएगा। क्लियर करते जाना एक एक चीज को। सबसे पहले क्या था, उसको ये डर था कि मैं मर जाऊंगा, अब यहाँ पे वो डर निकाल दिया कि तुझे कोई मार नहीं सकता, जब तक तेरी आयु शेष है तुझे कोई अहित नहीं कर सकता। अब ये डर तो यहाँ निकल गया, लेकिन अगला डर क्या उठ गया कि मेरा भी टाइम आएगा। तो वहाँ बताया अशरण भावना, अब मेरा टाइम आएगा तो वो क्या उपाय करता है कि मेरा समय आएगा तो इसके लिए मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर को अपॉइंट कर लूँ, मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में पहले से रूम बुक कर लूँ, अगर मेरे पास बाद में पैसा नहीं होगा तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए वो पूरी जिंदगी दौड़ भाग करता है। क्यों करता है? क्योंकि चलो मान लिया कि मेरा समय आएगा, लेकिन मैं उस समय के लिए तैयार रहूं ना। मेरे को जैसे मान लो मेरे को हार्ट अटैक हो गया या मुझे कोई भी बीमारी हो गई, तो मुझे अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल मिलना चाहिए जिससे मैं बच जाऊं। क्यों अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल क्यों जाते हो? मरने के लिए जाते हो? बचने के लिए? बचने के लिए जाते ना। सबसे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं? बचने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उसने जो बचने का उपाय किया, मतलब इसके बाद जो उसने बचने का उपाय किया, उस उपाय को यहाँ पर हटाते हैं। क्या कहते हैं? अशरण। कि अगर कोई भी आ जाए, साक्षात जिनेन्द्र भगवान भी उतर कर आ जाए, तो तेरी आयु कर्म जब समाप्त होगी तब तुझे बचाने में समर्थ नहीं है, है ना? यहाँ पर पहले उसको मृत्यु का भय हटा, फिर उसने उपाय किया, तो उस उपाय को भी हटाया कि जो तुम्हें उपाय करता है वो कोई भी उपाय तेरे काम में आने वाला नहीं है। जब तेरा समय आएगा उस समय, देखिए इसमें निकाले दूसरा लिखा है ना, अशरण भावना में सुर असुर खगादित जेते मृग जो हरिकाल दले से मणि मंत्र तंत्र बहु हो ही मरते न बचारे कोई। कि तू चाहे कितने ही मंत्र तंत्र या कुछ भी कर ले, कैसे डॉक्टर को बुला ले या किसी को भी प्राइम मिनिस्टर क्या तू जिसको बुला ले बुला ले, लेकिन तुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता। ये हुआ। अब अगला क्या उठा कि चलो मरना तो है ही, मरने से कोई बचा नहीं सकता, तो जब तक जिएंगे अच्छे से जिए। क्या कहा? मुझे मरना है ये निर्णय हो गया, मुझे कोई बचा नहीं सकेगा ये भी पक्का हो गया, तो अब जितनी आयु मेरे पास है उसको तो मैं मजा लूं, है ना? जितना समय है उसको तो मैं ऐश में जीऊं, आराम से खूब खाऊं पीऊं मजा करूं घूमूं फिरूं, बराबर है? तो उसको यहाँ पर हटाया। क्या कहा? संसार भावना। कि ये जो संसार है उस संसार का स्वरूप क्या है? जो यहाँ पे लिखा चहुंगति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार असारा या में सुख नाही लगारा कि ये संसार में क्या है चारों गति है और चारों गतियों में जीव भरे पड़े हैं लेकिन इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है ना। जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थन कर क्यों क्या काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अब वो यहाँ से आया यहाँ पर आया यहाँ पर आके थोड़ा बहुत बचा यहाँ पर तो फिर यहाँ पर भी उसको हटा दिया। क्या कहा कि जिस संसार में तुम सुख मान रहे हो उस संसार में तो बिल्कुल भी सुख है ही नहीं। अब तो ऐसा हो गया ना बिल्कुल हालत में अब कुछ बचा ही नहीं अपने पास में। अब उसने कहा चलो इस संसार में भी दुख है लेकिन हम सब परिवार वाले मिलकर इस दुख को झेल लेंगे है ना। मेरे तो बहुत मित्र हैं मेरे तो पूरे परिवार वाले सब प्यार करते हैं मेरे पास बहुत लोग हैं तो कोई बात नहीं इस दुख को हम एक साथ मिलकर सहन कर लेंगे। तो क्या आया आगे एकत्व भावना कि जिस संयोगों का तू घमंड कर रहा है मतलब जो तू कह रहा है ना मेरे इतने मित्र हैं मेरा इतना अच्छा परिवार है सब लोग मेरे साथ हैं तो वो यहाँ बताया एकत्व भावना कि जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदी होगी कि जो तू सबको अपना मान रहा है वो जितने भी पदार्थ हैं तू कैसा है अकेला है तू कैसा है अकेला है क्योंकि हम कैसे आते हैं जन्म कैसे लेते हैं अकेले ही लेते हैं तो हम जो इस संसार में आए हैं वो कैसे आए हैं एकत्व पने को लेकर आए हैं तो जितने भी ये संयोग आदि हैं वो सब संयोग तेरे कुछ भी काम में आने वाले नहीं है तो उन संयोगों से भी तू क्या कर दूर हो। ये वैराग्य को बढ़ा रही है ना कि पहले सबसे पहले तो देखिए अगर इसमें जीव को डर लगता है तो इसका मतलब वो वास्तव में भावनाओं का चिंतन नहीं कर रहा है। ये तो वास्तव में संसार से हमको और मोक्ष की तरफ ले जाने वाली भावना है। एकत्व में यहाँ पे क्या कहा शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिये एक ही देते सुख दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के है मेरी कि जितने भी हैं वो सब किसी न किसी स्वार्थ के लिए आपके साथ में लगे हुए हैं कोई ना कोई सब अपने अपने स्वार्थ से अपने प्रयोजन से आपके साथ में संयोग है। तू वास्तव में एकत्व पने को लेकर आया है और तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है एकत्व एक पना ही तेरा वास्तविक स्वरूप है। तो अब इस एकत्व में देखिए दो एक बात आती है जैन दर्शन की सिद्धांतों को समझने की देखिए महानता क्या है। अगर हम जनरली ये समझे कि एकत्व भावना बता दिया क्या बता दिया कि स्त्री तेरी नहीं है पुत्र तेरा नहीं है सब लोग स्वार्थ के हैं तो इस जीव के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है ना। द्वेष भावना कैसी कि ये तो स्वार्थ के है ये सब तो मेरे सहयोग के नहीं है ये तो ऐसे है तो वो द्वेष भावना उत्पन्न ना हो इसके लिए अन्यत्व भावना। क्या कहा अन्यत्व भावना में कि ये जो संयोग है वो संयोग तेरा साथ दे सकते हैं या दे ही नहीं सकते समझे। ये जो स्त्री पुत्र है आपने क्या बोला एकत्व भावना में कि ये कोई भी तेरे नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इनको छोड़ दूँ ये मेरे नहीं है ये मेरा कुछ अच्छा बुरा नहीं करते तो मैं इनको छोड़ देता हूँ तो ऐसी द्वेष भावना उत्पन्न नहीं हो जीव से। इसके लिए कहा अन्यत्व भावना कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है इनका वास्तविक स्वरूप ही ऐसा है कि वो तेरे साथ में कुछ कार्य कर ही नहीं सकते। इसके लिए हर चीज को बिल्कुल समझने की हमें होता है ना कि जीव को जीवन में वैराग्य कई बार आता है जीव को हम सबको अपने जीवन में वैराग्य कई बार आता है सब अपने अपने उदाहरण जैसे किसी को कोई इच्छित चीज थी वो नहीं मिली किसी को माँ बाप ने कुछ कभी कभी इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी हमको ऐसा वैराग्य आ जाता है कि संसार में कुछ है ही नहीं मैं तो सब कुछ छोड़ दूँ। लेकिन ऐसा वैराग्य होता ना बारिश की बूंदों की तरह का वैराग्य है जो कुछ समय तक रहता है और बाद में वो वापस गायब हो जाता है। तो ऐसा वैराग्य नहीं लाना है हमें, वैराग्य जो लेना है कि वो वैराग्य जब उत्पन्न हो तब से अंतिम समय तक हमारे साथ में रहे, कि अंतिम समय तक मैं उसको साथ में रखूं। तो उसके लिए है अन्यत्र भावना, कि ये जो तेरे जितने भी संयोग हैं वो संयोग वास्तव में, क्योंकि वो संयोग भी एकत्व भावना को लिए हुए हैं, वो संयोग भी अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। तो कोई भी जो संयोग है वो कोई भी ना तेरे साथ आया है ना तेरे साथ में जाएगा, क्योंकि बोलो ना कि आपको एक साथ में रहने की आदत है, समझ ना, हमें एक साथ में रहने की आदत है। तो ग्रंथ में लिखा है कि अगर इतनी ही एक साथ रहने की आदत है तो इस गति में जन्म क्यों लिया। किसी सांप के यहाँ पर सांप जो मादा जो नागिन होती है वो एक समय में 1000 से भी अधिक, 1000 से भी मोर देन 1000 उसके बच्चे होते हैं। तो वहाँ जन्म लेता, अगर इतनी साथ की भावना है तो वहाँ जन्म लेना चाहिए था, और इससे भी अधिक साथ की भावना है तो निगोद में जन्म लेना चाहिए था, जहाँ पे प्रति समय अनंत जी एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही मर जाते हैं। तो ये तो सिर्फ उदाहरण के रूप में कहा, वहाँ भी अगर वास्तव में देखे तो सब अन्य अन्य ही है सबका एक अन्य अलग अलग ही, लेकिन फिर भी ये जितने भी संयोग है वो संयोग सदाकाल तेरे साथ रहने वाले नहीं है। हम सभी देखते हैं कितने ही लोग थे जिनका अपने अपने हिसाब से आते हैं अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं। इसके बाद में आएगा कि यहाँ तक संसार की अनिश्वरता क्षणभंगुरता सब मालूम पड़ गई, अब अंतिम बचा जो क्या बचा वो मेरा शरीर। ये सब संयोग तो आपने हटा दिए, अब शरीर भी चलो जाने वाला है ये भी आपने बता दिया, लेकिन जब तक शरीर है मेरे साथ तब तक तो मैं उसको अच्छा रखूं, बराबर है, अच्छा जिम जाऊं पार्लर जाऊं सब करूं अच्छे से शरीर को मैं सजा संवार के रखूं। तो फिर उसके लिए बताया अशुचि भावना। अशुचि भावना में क्या बताया, शुचि मतलब पवित्रता, आ मतलब जो पवित्र नहीं है, कि ऐसा क्या है ये जो देह है, तो नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करे किम यारी, कि वास्तव में ये जो शरीर है ये बहुत सबको जनरली मालूम है, कोई ऐसी एग्जांपल देने की इसमें जरूरत नहीं है। मैंने ब्रश किया, बराबर है, डेली तो मॉर्निंग में सब ब्रश करते ही है, मैंने एक बार किया, दो बार किया, कितनी बार किया, 100 बार किया, बराबर 100 बार मैंने ब्रश किया। अभी मेरे सामने बादाम का हलवा आया, ठीक है, हलवा रखा मैंने चम्मच से, हलवा उठा के खाली मुंह में रखा, खाया नहीं, खाली मुंह में रखा, ऐसा बंद किया, निकाला और आपको दिया, आप खाएंगे? अरे मैंने 100 बार मंजन किया ना। क्या हुआ क्या उसमें हलवे में, क्या हो गया? वो इस शरीर के संपर्क में आ गया। तो ये तो एक बहुत छोटा जनरल मैंने बात आपको बताई कि इतनी सी भी चीज भी फिर इसमें और आगे जाए तो वो और अत्यंत घिनावनी होती जाएगी। आपने खा लिया, उल्टी हो गई, वॉमिट हो गई, तो वो और देखा नहीं जाएगा और अलग अलग, मतलब वो और उसका रूप बिगड़ता ही जाएगा। तो इस शरीर के संयोग में आकर बादाम का हलवा क्या, जो भी सोना चांदी डाल के कुछ भी अच्छे से अच्छा पदार्थ भी इस शरीर के संयोग में आकर अपवित्र हो जाता है। तो ऐसे अपवित्र शरीर को मैं दिन रात घिसकर उसको पवित्र बनाने का व्यर्थ प्रयास क्यों करूं? तो इस प्रकार इन 6 भावनाओं में अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। पहली बोलिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, तीसरी, छठी, दूसरी, चौथी, तीसरी, छठी, तीसरी, दूसरी पहली, दूसरी तीसरी, चौथी पांचवी, छठी तीसरी, चौथी पहली, छठी याद नहीं हुआ तो आप याद कर लेना। वैसे सबको बारह भावनाओं के नाम याद होने चाहिए। चलिए बोलिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये छह भावनाएं हैं। पहले की छह भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करती हैं, वैराग्य को बढ़ाती हैं। अंत की छह भावनाएं तत्व परक है, मतलब तत्व का वास्तविक ज्ञान कराती हैं। और फिर सबसे अंत में हमें अपने देह की जो हमें गति मिली है उसकी ज्ञान की, वास्तविक ज्ञान की बोधि दुर्लभता बताकर वास्तविक जो हमारा धर्म है उस धर्म का ज्ञान कराती है। चलिए, हमारा आज का विषय है अन्यत्व भावना। वैसे देखिए, बारह भावना में जनरली इतना कठिन कुछ नहीं है, लेकिन भाव बहुत है, तो हम उन भाव को समझेंगे तो हमें ज्यादा उसका फायदा रहेगा। बारह भावनाएं आप पढ़ें तो मात्र एक को ही नहीं पढ़े, कम से कम दो तीन बारह भावनाएं तो ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद हो। या आज जो पूजन पढ़ी थी उसके अंदर भी आपने बारह भावनाएं पढ़ी है, हाँ? जो आज पूजन पढ़ी ना भाव, उसकी जयमाला के अंदर भी आपने पढ़ा भाव वन में जी पर घूमती। चलिए निकालिए एकत्व भावना से। पिछली बार की क्लास में कौन कौन था? एकत्व भावना हो गई थी ना? चलिए 50-50 की 80-20 चलो ठीक है। हाँ, एकत्व भावना एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद अन्यत्व जो है विषय उसके ऊपर चलेंगे।
शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगेंगे ते, सुत नारा हो नसीरी, सब सारथ के हैं मीरी।
भावार्थ, जीव ने सदाय पोता थी पोतानो एकत्व अने परथी विभक्त पणु छे, तेथी पोतेज पोतानु हित अथवा अहित करी शके छे, परनु काई करी शकतो नथी। माटे जीव जे काई शुभ के शुभ भाव करे छे तेनु फल आकुरता पोतेज एकलो भोगवे छे, तेमा कोई अन्य स्त्री पुत्र मित्र वगैरह भागीदार थई शकता नथी। केम के ते बधा पर पदार्थ छे अने ते जीवादि सर्व पदार्थ जीव ने गे मात्र छे, तेथी तेओ कोई पण जीवना खरेखर सगा संबंधी छे ज नहीं, छता अज्ञानी तेने पोताना मानी दुखी थाय छे। बराबर है, क्या समझे? जो भी अपन ने बात की कि कोई भी संयोग पर पदार्थ इस जीव के है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये जो जीव है अज्ञानी जीव है वो उनको अपना मानकर उसमें आकुलित व्याकुलित होता है। बराबर है, चलिए आगे। संसार मां अने मोक्ष मां आ जीव एकलोज छे एम जानी सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्मा साथे ज पोतानु सदाय एकत्व मानी पोतानी निश्चय परिणति द्वारा शुद्ध एकत्व नी वृद्धि करे छे, ते एकत्व भावना छे। कि वास्तव में संसार में भी ये जीव अकेला है और मोक्ष में भी ये जीव अकेला ही जाएगा, ऐसा जानकर सम्यक दृष्टि जीव अपनी जो एकत्व पना है, ऐसी जो निश्चय शुद्ध परिणति है, उस परिणति का ही सदैव भाव करते हैं। देखिए, समय सार के अंदर एक कलश आता है, आई थिंक 168 नंबर का कलश है, उसमें लिखा है सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदय जन्य जीवित जन्म मरण जीवित सुख दुखम। भाव क्या है? सर्वम सदैव नियतम, सर्वम मतलब जितनी भी चीज इस जगत में होती है, सदैव नियतम कि वो सदैव नियत जैसी है, जैसी होने वाली है वैसी ही होती है। सर्वम सदैव नियतम भवति, और इस जीव के जितने भी परिणाम आदि या जीव के जितने भी संयोग आदि हो रहे हैं वो उसके स्वयं के कर्मोदय जन्य कि उसके स्वयं के कर्म के उदय के कारण होते हैं।
उसमें उस कर्म के उदय में आगे की लाइन में है, उस कर्म के उदय में पर पदार्थ का कुछ भी मानना, पर पदार्थ का कर्तृत्व मानना, ये इस जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है कि वास्तव में इस जीव को, ये जो है ना एकत्व अन्यत्व भावना की जो बात बताई कि ये जीव अकेला ही आया है, अकेला ही मोक्ष में, या अकेला ही जब तक हमारी गति है तब तक अकेला ही विचरण करने वाला है। ये जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ तो आ रहे हैं और अपने अपने समय के अनुसार जाने वाले हैं, बराबर है। इसके लिए सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, इन पद पदार्थों से दृष्टि हटाकर जो एकत्व पना, जो शुद्ध ज्ञायक पना है, जो टंकुत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है, उस स्वभाव की ही दृष्टि करते हैं, बराबर। चलिए अन्यत्व भावना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। अन्यत्व भावना,
जल पे जो जीतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जो निधन धामा, क्यों है एक मिल सुत रामा।
अन्यत्व जीव अने शरीर पानी अने दूध नी जेम मणिला छे, तो पण भेगा एक रूप नथी, जुदा जुदा छे। जैसे होता है ना दूध वाला दूध बेचता है तो पानी मिला देता है, जैसे आपके घर पे आया तो आपने उससे क्या किया, आप उससे बोलते ना कि कितना पानी मिलाते हो, तो आप पानी खरीदते हैं कि दूध खरीदते हैं? दूध खरीदते हैं, लेकिन वो दूध के साथ में पानी मिला हुआ है तो वो साथ में आपके आ गया। तो अब ये बताइए कि वो पानी अलग है कि नहीं है? दूध में हमने एक लीटर दूध में कितना लीटर पानी, चलो नहीं ज्यादा नहीं, बहुत कम, थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल पाव भी, पाव से भी थोड़ा कम, इतना 100 मिलीमीटर जो भी होता है वो हमने उसके अंदर डाल दिया, बिल्कुल इतना सा डाला। चलो मान लो 2 बूंद भी डाली तो भी वो 2 बूंद उस दूध में, 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी की डाली तो वो पानी अलग है कि मिल गया? मिल गया ना, कहाँ अलग है? मिला हुआ दिख रहा है लेकिन है अलग, तो अलग करके बताओ। नहीं नहीं, उबालने से तो नहीं निकलता, नींबू डालने से तो फट जाएगा, नींबू डालने से तो फट जाएगा। देखिए वास्तव में बात सही है कि वो जो, इसके लिए यहाँ पे इसका उदाहरण दिया, अगर जनरल कोई दूसरा उदाहरण देते तो आप उसको अलग अलग मान लेते कि ये तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन दूध और पानी एक ऐसा मिश्रण हो गया कि उसको अलग करना आपके बस की बात नहीं है। वो शास्त्रों में उदाहरण भी आता है कि एक हंस एक ऐसा प्राणी है, राजहंस करके एक प्राणी होता है, अभी पाया जाता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसके सामने आप पानी मिला हुआ दूध रख दो, वो दूध दूध पी जाएगा और पानी आपका पच जाएगा। मतलब बिल्कुल जैसे वो भेद विज्ञान कर देते ना, ऐसे वो दूध और पानी के अंदर बिल्कुल दूध दूध वो ले लेगा और खाली पानी आपके बर्तन में रह जाएगा, ऐसे वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। लेकिन वास्तव में ये जो चीज यहाँ पे जो कही कि ये जो दूध पानी हमें कितना ही मिला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में पानी पानी के स्वभाव को लिए हुए है और दूध दूध के स्वभाव को लिए हुए है, उसी प्रकार ये दूध पानी तो मान लो आपने 1 घंटे पहले मिलाया, लेकिन अनादि काल से ये जो जीव है ये कर्मों के साथ मिला हुआ सम्य मिला हुआ है। चलिए मिला हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में मिला नहीं है, क्योंकि अगर मिल जाए तो फिर अलग नहीं हो सकता। अगर ये कर्म इस जीव के साथ मिल जाए, इस जीव के स्वभाव के साथ ये कर्म मिल जाए, तो ये जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अगर कर्म इस जीव के स्वभाव के, कर्म से तो छूटना है, पर कर्म ही अगर इस जीव के स्वभाव में मिल गए तो फिर वो अलग कैसे होंगे? अलग तो वही वस्तु हो सकती है जो हमारे स्वभाव से और पहले से ही अलग है, लेकिन हमने उसको क्या माना हुआ है, उसको हमने अपने से मिला हुआ माना है। तो वो अनादि काल के जो कर्म आदि संयोग है वो संयोग भी इस जीव से बिल्कुल भिन्न है, तो ये दूध पानी की तो बात ही नहीं। वापिस से अन्वयार्थ पे, जीव अने शरीर पानी अने दूध नी जेम मळेला छे तो पण भेगा एक रूप नथी, जुदा जुदा छे, तो पछी बाहर मां प्रगट रूप थी छे, पीछे प्रगट रूप थी जुदा देखाय छे, एवा लक्ष्मी मकान पुत्र अने स्त्री वगैरह मड़ी ने एक केम होई सके। मतलब बड़ी चीज को बताकर कि जब इतना बड़ा संयोग, मतलब ये जो कर्म आदि है ये ही जब तुम्हारे नहीं है तो फिर ये जो बाहर के संयोग है, स्त्री पुत्र पैसा मकान जितनी भी चीजें हैं, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? बराबर, जब कोई पढ़े ही नहीं तो मेरिट में कैसे आ सकता है? बराबर है, इंडियन कल्चर फिर भी छोड़ दो, कभी हो भी सकता है इंडिया में, लेकिन फिर भी जनरल बात यह है कि जब इतना बड़ा, मतलब जो कर्म आदि जो अनादि काल से इस जीव, क्योंकि ये स्त्री पुत्र कब से है? इस जन्म से। ये रुपया पैसा कब से है? 10 साल से 20 साल से। जितनी भी चीजें हैं वो कोई ना कोई समय से है, लेकिन ये जो कर्म आदि है वो तो कब से है? अनादि काल से इस जीव के साथ में चले आ रहे हैं, तो भी इस जीव के साथ के नहीं हुए तो फिर ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो इस जीव की हो ही नहीं सकती। बराबर है। चलिए भावार्थ, जेम दूध अने पानी एक आकाश क्षेत्र मणेला छे, परंतु पोत पोताना गुण वगैरह नी अपेक्षाए बन्ने तद्दन जुदा जुदा छे, तेम आजीव अने शरीर पण मणेला देखाय छे, तो पण ते बन्ने पोत पोताना स्वरूपादिनी अपेक्षा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकार स्वभाव थी तद्दन जुदा जुदा छे, कदी एक थता नथी। मतलब जीव का जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है और पुद्गल का जो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो कभी भी एक में होता नहीं है। मैंने अगर ध्यान हो किसी को एक उदाहरण दिया था, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और बाजू में एक घड़ी की दुकान है और उसने घड़ी जो है दो टेबल पे उसने घड़ी रखी है, एक टेबल पे एक पानी की बाल्टी है टॉप रखा हुआ है और दूसरे पे ऐसा है, तो उसने 20 घड़ियां उस टॉप में डाली हुई है, पानी के अंदर डाली हुई है, और 20 घड़ियां बाहर डाली हुई है। तो अब प्रश्न ये है कि वो जो पानी के अंदर डली हुई घड़ी है, पहली बात तो कोई बोलेगा कि कितना मूर्ख है, घड़ी खराब हो जाएगी ना पानी में डली हुई, बराबर ना? घड़ी बेचना है, घड़ी का व्यापार करना है और उसने 20 घड़ी किस में डाल दी है? पानी में डाल दी है, वाटर में डाल दी है, तो वो घड़ी खराब हो जाएगी कि नहीं? वाटर प्रूफ है, चलो ठीक है, इतना तो हो गया, इतना तो आ गए हम लोग। ये होता ना कि हमें लौकिक चीज में बहुत जल्दी कैच हो जाती है, क्या है कि वो घड़ी कैसी है? वाटर प्रूफ है। आप कभी भी दुकान वाले के पास जाके ये नहीं कहोगे कि कितना बड़ा पागल है कि अपना ही नुकसान कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये घड़ी कैसी है, वाटर प्रूफ घड़ी है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो अब प्रश्न ये है कि वो जो पानी के अंदर डली हुई जो वाटर प्रूफ घड़ी है, उन घड़ियों ने, ये जो बाहर रखी घड़ी है, उन घड़ियों ने पानी को छुआ कि नहीं छुआ? नहीं छुआ, वो तो दिख रही है। जो पानी के अंदर डली हुई घड़ी है उनने पानी को छुआ कि नहीं छुआ? समझे प्रश्न? जो घड़ी है, जो पानी के अंदर डली हुई घड़ी है, उस घड़ी ने पानी को छुआ कि नहीं छुआ? अगर छू लेता तो वो घड़ी खराब हो जाती, वो वाटर प्रूफ घड़ी है ना, हमें दिख रहा है वो छूती हुई, लेकिन वास्तव में उसके बाद भी वो घड़ी, उस वो पानी उस घड़ी को कभी छूता नहीं है। मतलब अगर वो पानी, थोड़ा इसको और वो कर दे कि अगर वो पानी उस घड़ी को छू ले तो वो घड़ी कैसी हो जाए? खराब हो जाए, क्योंकि पानी अगर अंदर चला जाए उस घड़ी के तो वो घड़ी कैसी हो जाए? खराब हो जाए, लेकिन वो उसकी संरचना ऐसी है कि वो पानी कभी उस घड़ी के अंदर जाता नहीं है, इसके लिए उसे वाटर प्रूफ घड़ी कहते हैं। उसी प्रकार ये जो जीव है वो कैसा है? कर्म प्रूफ। कि ये कर्मों के अंदर पड़ा हुआ है। सिद्ध भगवान है वो तो आपको अलग दिख ही रहे, जो टेबल पे बाहर पड़ी हुई घड़ी है वो तो क्या है, सिद्ध भगवान। उसको तो पानी ने छुआ ही नहीं है, सिद्ध भगवान को तो कर्म छू ही नहीं रहे। लेकिन जो पानी के टोब में पड़ी हुई घड़ी है, जो हमें पानी से छूती हुई, पानी के अंदर डूबी हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद भी उनको पानी ने छुआ नहीं है। उसी प्रकार, क्योंकि छूले तो खराब हो जाए, उसी प्रकार ये जो जीव है ये कर्मों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कर्मों के संयोगों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी अनादि काल से इस जीव को किसी भी कर्म का संयुक्त पना नहीं है। कोई कर्म इस जीव के स्वभाव के साथ एकमेक नहीं होता, क्योंकि अगर ये कर्म इस जीव के स्वभाव के साथ एकमेक हो जाए तो ये जीव कभी भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा। बराबर है, समझ में आया? दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कर्मों के साथ दिख रहा है। हम बोलते ना कि अरे क्या करे, कर्म हमारे इतने बलवान है, हमें कर्मों ने दुखी कर रखा है। कर्म कितना भी ज्यादा भी हम बोल देते कि मंदिर क्यों नहीं जाते, क्या करें हमारे ऐसे पाप कर्म का उदय है, ऐसा भी कहते हैं कोई कोई लोग, हमें भगवान बुलाते ही नहीं। मतलब इतना कि हमारे ऐसे पाप कर्म का उदय है कि भगवान हमको बुलाते ही नहीं है। भगवान बुलाएंगे तो कहाँ जाएगा। कि वास्तव में कर्म हमारे साथ दिखते हैं, कर्म हमारे साथ हैं। जब आप इसमें थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे, जब इसमें जो संयोग संबंध, एक क्षेत्र होगा संबंध, अत्यंता भाव संबंध, जो संबंध है, जो अभाव की चर्चा है, भावों की चर्चा, जब उस पे जाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा कि ये जो संयोग है उनका क्या संबंध है, इस शरीर का क्या संबंध है, उसके बाद कर्मों का क्या संबंध है। वो सब संबंधों को बिल्कुल, मतलब हमारी जो जिनवाणी है वो कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस लिखा हुआ है और पढ़ते जाओ। बिल्कुल लॉजिक के साथ एक एक चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। हम सोचे एक दिन में तो होने वाला नहीं है। आपको डॉक्टर या कुछ भी आप बनते हैं तो प्रोसेस क्या होती है, बचपन से हम स्टडी करते हैं, 10-12 के बाद हम सब्जेक्ट्स लेते हैं, सब्जेक्ट्स लेने के बाद हम अच्छे से अच्छा कॉलेज लेते हैं। उस कॉलेज में भी चलो मैंने मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया तो मैं डॉक्टर, कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैं डॉक्टर बना कि नहीं? क्यों? अभी तो सिर्फ एडमिशन हुआ, अभी तो पूरा उसके सेमेस्टर बाकी है, पूरा जो 3 साल का जितने भी साल का हमको पढ़ना है वो पूरी स्टडी बाकी है, और हर सेमेस्टर क्लियर करना भी होगा, तब जाके जितने भी एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं MBBS की डिग्री मिलेगी। खाली कॉलेज में एडमिशन लेने से डिग्री नहीं मिलेगी। खाली जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, मंदिर आ गए तो सब कुछ हमारे ज्ञान में आ गया कि मैं तो सबसे महान, मैं तो इतना पुण्यशाली कि मैं जैन धर्म में जैन कुल में मिला। पुण्यशाली तो हो, लेकिन जिस विद्यार्थी का, जिस स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, बताओ वो पुण्यशाली है कि नहीं? नीट का एग्जाम दिया, कितने लोग देते हैं? ऑल ओवर इंडिया नीट का एग्जाम अभी हुआ, कितने लाखों लोग, लाखों ने दिया होगा, लाखों स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया होगा, कितने सेलेक्ट होते हैं? हजार। हजार में से भी कितनों को उनकी चॉइस का कॉलेज मिलता है? बॉम्बे में है ही कितने, 4 कॉलेज तो है टोटल, 4 कॉलेज की सीट कितनी होगी, मुश्किल से 30-40 स्टूडेंट्स मिलते हैं बॉम्बे के अंदर। तो सोचिए उन लाखों में से 30-40 कितना पुण्यशाली, कितना मेहनती जीव होगा कि उस मेहनत के कारण उसको वो पद मिला। तो वैसे ही आप कितने पुण्यशाली हैं, आप कितने मेहनती थे कि आपने इतने पुण्य कर्म किए, जिस पुण्य कर्म के कारण आपको अभी वर्तमान में जैन कुल मिला, और जैन कुल ही नहीं मिला, उसके बाद आपको मंदिर मिला, जिनवाणी सुनने का, सुनाने वाले सुनने का मौका मिला, कि आपको अब तो मन चाहा कॉलेज मिल गया। लेकिन मन चाहा कॉलेज भी क्या करेगा, पढ़ना तो आपको ही पढ़े ना, पढ़ना तो जिसको स्टूडेंट्स को है, जिसको डॉक्टर बनना है, पढ़ना तो उसको खुद ही पड़ेगा। तो सब कुछ तो मिल गया, लेकिन अब पढ़ना तो हमको खुद ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार के जितने भी संयोग आदि है उन सब से भिन्नता करके, अभी जो ये पांची भावना बताई अन्यत्व भावना, कि मैं ये सब संयोग मुझसे बिल्कुल क्या है, भिन्न है। और उसके बाद ये समय तो हो गया है, अशुचि भावना खाली छंद पढ़ के सामान्य अर्थ करके चलते हैं, अगली क्लास में फिर अशुचि करेंगे। कि ये जो अन्यत्व आदि बताई, तो अब ये जो अंतिम जो देह मेरे पास है, कि ये देह है वो देह का स्वरूप कैसा है, कि अब मुझे क्या हुआ, सबसे भिन्नता तो बता दी, लेकिन अभी भी मेरा जो सबसे बड़ा राग कहाँ रुका हुआ है इस शरीर के साथ, कि शरीर का कुछ भी हो गया तो किसका हो गया, मेरा हो गया। शरीर को लगी किसको लगी, मुझको लगी। शरीर का हित हुआ किसका हित हुआ, मेरा हित हुआ। तो मैं इस शरीर को अच्छे से अच्छा बनाने का सदा प्रयास करता हूँ, तो वो मेरा प्रयास कार्यकारी है कि नहीं। मैं जितना सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर को वृद्धि करने के लिए, शरीर को पोषने के लिए जो कार्य करता हूँ, वो कार्य वास्तव में सही चल रहे है कि नहीं, उसके लिए शरीर का स्वरूप अच्छी भावना में बताया है। एक बार पढ़ते हैं।
पल रुंधिरे राग मल थैली की कस वसादी थे मैली, नव द्वार मै गिनकारी अस देह करे कि मयारी।
क्या लिखा अनुवाद में, जे मास लोही परु अने विस्तानी कोथड़ी छे, हाड़का चरबी वगैरह थी अपवित्र छे, अने जेमा घृणा ग्लानी उत्पन्न करवा वाला नव द्वार ज बहे छे, एवा शरीर मा प्रेम राग केम कराए। मतलब पंडित जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा जो शरीर का स्वरूप है, कि अगर मान लो आप जैसे हॉस्पिटल जाए और हॉस्पिटल के अंदर कोई हॉस्पिटल, या जैसे मान लीजिए अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए आपकी आंख के सामने, और कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो जो शरीर आप पहले जिस शरीर को इतना रूपवान मानते थे, वही शरीर बाद में ऐसा हो जाए कि आप उसको देख भी नहीं सकते। तो ऐसा जो ये शरीर का स्वरूप है, और क्या क्या है, किसकी है, कि जिसके अंदर भरा हुआ क्या है, कि वही हाड़ मांस पीप वगैरह चर्बी वगैरह जिसके अंदर भरा हुआ है, ऐसे शरीर में। और क्या कहा, जिसमें जो द्वार है, जैसे नाक, मतलब जिसमें इतने द्वारों से प्रति समय मैल निकलता ही रहता है, ऐसे शरीर से ये जीव तू प्रीति प्रेम राग किस प्रकार से कर सकता है। कि कोई ऐसा प्रश्न है कि इतनी बुरी है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति इतना बुरा है, इतने बुरे से तुम दोस्ती कैसे कर सकते हो। अपन जैसे अपना कोई फ्रेंड है और उसने किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर ली या उसके साथ में वो बैठ गया, तो अपन क्या बोलते हैं, पहले तुम्हें पता नहीं वो कितना बेकार है और तुम उसके साथ कैसे बैठ सकते हो। तो उसी प्रकार ज्ञानी जीव हमको कह रहे हैं कि ये शरीर का स्वरूप तो इतना घिनावना है, उसके बाद हे जीव तू इस शरीर से राग प्रीति किस प्रकार से कर सकता है। ये हमने, ये इसका सामान्य स्वरूप हुआ। आगामी क्लास में अशुचि भावना से ही आगे चलेंगे। देखिए आज हमने जनरली क्या देखा, भावना किसे कहते हैं, बराबर है, जो 12 भावना है उसमें 6 जो भावना है वो मूल वैराग्य को उत्पन्न करने बढ़ाने वाली है, अंत की 6 भावना तत्व परक है, फिर अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि का जो हमने स्वरूप समझा, कि वास्तव में ये जो 6 भावनाएं है ये इस जीव को इस देह से संयोग से भिन्नता बताकर इस जीव को अपनी तरफ लेकर जाती है, कि ये धीरे धीरे सबसे अलग किया, तो वास्तव में जो तेरा एकत्व स्वरूप है, जो सबसे भिन्न जो अन्यत्व स्वरूप तेरा है, उस स्वरूप में तू जा। फिर आगे जो आश्रव संसार जो आदि भावनाएं आएंगी उसमें बाद में कर्मों से भिन्नता बताकर, फिर लोक का स्वरूप बताकर, और इस ज्ञान की दुर्लभता को बताकर, अंत में इस जीव का जो वास्तविक साथी है, जो धर्म है, उस धर्म का स्वरूप इसमें बताया जाएगा। तो ये जो 12 भावना है ये मुनिराज वैराग्य की वृद्धि करने के लिए, अपने पंचकलड़ा में हुआ था ना बारह वाहन, जब दीक्षा लेने से पूर्व जब राजकुमार शांतिनाथ जब दीक्षा लेने से पूर्व जो उनको वैराग्य आता है तो वैराग्य की भावना, वैराग्य को वृद्धिगत करने के लिए भावना बातें हैं। आपके लिए एक जनरल होमवर्क है कि ये बारह भावनाएं, बारह भावना के नाम तो याद करने ही हैं, सबको होने भी चाहिए। बारह भावना कितने के द्वारा, कितने ज्ञानियों के द्वारा लिखी गई है, सबके आपको नाम याद होने चाहिए। नाम तो सबके बारह भावना ही है, किन किन के द्वारा लिखी गई है वो आप रिसर्च करना। 6 से लेकर 10, मिनिमम 6, मैक्सिमम 10 या उससे ज्यादा भी आपको मिले तो वेल एंड गुड है, लेकिन 6 तो आपको मिलनी ही चाहिए। और 6 के नाम आप बताइए, होमवर्क बताना किसी को नहीं है, ये होमवर्क हमारे खुद के लिए है कि हमको मालूम होना चाहिए कि ये बारह भावना जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है और किन किन विद्वानों के द्वारा बारह भावनाएं लिखी गई है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीक तक, हमको जो अलग अलग बारह भावनाएं लिखी गई है सब एक बार हम देख ले कि इन किन विद्वानों के द्वारा बारह भावनाएं लिखी गई है। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।